वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 167 और 168 की तिलावत सुने।
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين।
उन्होंने कहा, हे लूत, यदि तुमने ये बातें करना बंद न किया तो अवश्य ही निकाल बाहर किए जाने वालों में से होगे। लूत ने कहा, मैं तुम्हारे कर्म से पूरी तरह विरक्त हूँ।
इससे पहले बताया गया कि हजरत लूत अपनी जाति के लोगों की समलैंगिकता जैसे निंदनीय कर्म की आलोचना करते थे और उन्हें इससे रोकते थे। ये आयतें कहती हैं कि उन लोगों ने अपने पैगंबर की बात सुनने और उस निंदनीय काम को छोड़ने के बजाय उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने उपदेश देना नहीं छोड़ा तो उन्हें शहर से निकाल बाहर करेंगे, ताकि पूरे संतोष के साथ अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। किंतु हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनकी धमकियों से डरने के बजाय बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे इस काम से घृणा करता हूँ और इस निंदनीय काम का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा।
रोचक बात यह है कि हजरत लूत ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे काम से घृणा करता हूँ, अर्थात अगर तुम अपना घृणित कार्य छोड़ दो तो पुनः हमारे और तुम्हारे बीच मित्रता व अपनायत स्थापित हो जाएगी। तुम्हारा घृणित कार्य इस बात का कारण बना है कि मैं उससे संघर्ष करूं और उसके प्रसार को रोकने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करूं।
इन आयतों से हमने सीखा कि पवित्र लोगों को देश निकाला देना अपवित्र व अत्याचारी लोगों की शैली है, ताकि वे निश्चिंत होकर अपने अपराधों और गलत कार्यों को जारी रख सकें।
गलत कामों पर चुप रहना वैध नहीं है। अगर गलत काम खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं तो उनका विरोध और उनसे विरक्तता की घोषणा भी खुलकर होनी चाहिए। जबान से भी और व्यवहार से भी बुरे कर्मों का मुकाबला किया जाना चाहिए।
चूंकि पैगंबर केवल ईश्वर पर भरोसा करते थे, इसीलिए वो शत्रुओं की धमकियों से नहीं डरते थे और किसी भी स्थिति में अत्याचार और बुराई से संघर्ष नहीं छोड़ते थे।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 169 से 171 तक की तिलावत सुने।
رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين।
हे मेरे पालनहार, मुझे और मेरे परिजनों को जो कुछ ये करते हैं उससे बचा ले। फिर हमने उन्हें और उनके सारे परिजनों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दायित्व अत्याचारियों को निरंतर उपदेश देने और उन्हें ईश्वर से डराने के बाद समाप्त हो गया, किंतु वे लोग ईश्वरीय पैगंबर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। अतः हजरत लूत ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वो उनके और उनके अनुयायियों के लिए मुक्ति का कोई मार्ग खोले, ताकि वे पापियों के कोप से सुरक्षित रहें।
ईश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें तथा उन सभी लोगों को जो उन पर ईमान ले आए थे आदेश दिया कि वे रात के समय जब सब लोग सो रहे हों शहर से बाहर निकल जाएं, ताकि दंड आने के समय शहर में न रहें। अलबत्ता हजरत लूत के परिजनों और उन पर ईमान लाने वालों में उनकी पत्नी शामिल नहीं थी, बल्कि वो उस जाति के पापी लोगों का साथ देती थी, इसलिए वो उन्हीं लोगों के साथ रही और दंड में ग्रस्त हुई।
इन आयतों से हमने सीखा कि दूषित व बुरे माहौल में रहना वैध नहीं है, बल्कि इस प्रकार के बुरे वातावरण से निकलने के विचार में रहना चाहिए। या तो माहौल को सुधारना चाहिए या फिर उससे दूर चले जाना चाहिए।
ईश्वर के निकट नियम संबंधों पर प्राथमिकता रखता है। अगर पैगंबर की पत्नी भी पदभ्रष्ट हो जाए तो वो तबाह हो जाती है और ईश्वरीय पैगंबर से उसका संबंध भी उसे बचा नहीं पाता।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 172 से 175 तक की तिलावत सुने।
ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
پھر ہم نے شیش لوگوں کو تباہ کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک ورشا کی تو وہ چتائے جا چکے لوگوں کے لیے کتنی بری ورشا تھی. نشچے ہی اس گھٹنا میں ایک بڑی نشانی اور ایک پاٹھ ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے ادھک تر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور نشچے ہی آپ کا پالنہار بڑا پربھتوشالی اور اتینت دیاوان ہے.
جب حضرت لوط علیہ السلام، ان کے پریجن اور ان پر ایمان لانے والے رات کو نگر سے نکل گئے تو وہاں ایک بڑا بھیانک بھوکمپ آیا اور پورا شہر اپنے واسیوں کے ساتھ تباہ ہو گیا. جن لوگوں نے پاپ اور برائی میں رات بتائی تھی اور نشچیتنا کی نیند سو رہے تھے، وہ ملبے کے نیچے دب کر مر گئے.
نہ کیول بھوکمپ سے پورا نگر تباہ ہو گیا، بلکہ ایشور نے اس شہر کے لوگوں پر پتھروں کی ورشا بھی کر دی. مانو دھرتی اور آکاش نے ایک ساتھ اچانک ہی اس دشکرمی اور ادنڈی جاتی پر حملہ کر دیا تھا، اور نگر کو اس کے واسیوں کے ساتھ اس پرکار تباہ کر دینا چاہتے تھے کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے.
حضرت لوط کی جاتی کے لوگوں پر کس پرکار پتھروں کی بارش ہوئی، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بھینکر آندھی آئی جس نے چھوٹے بڑے پتھروں کو زمین سے اوپر اٹھا لیا اور پھر اس جاتی کے لوگوں پر ورشا کر دی. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹھنڈا پڑا جوالا مکھی سکریہ ہو اٹھا اور اس کا لاوا ان لوگوں کے سروں پر جا گرا.
آگے چل کر آیت ان آیتوں کی بھانتی جن میں انیہ پیغمبروں کی جاتیوں کے انت کا ورنن کیا گیا ہے کہتی ہے کہ ان لوگوں پر دنڈ آنے کا کارن یہ تھا کہ ادھکانش لوگ ایشور کی نشانیوں اور چنہوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، بلکہ وہ ایشوری پیغمبر کے ورد شڑیانتر کرنے لگے تھے.
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ پاپی و برے سماج کو ایشوری کوپ و دنڈ کی پرتیکشا میں رہنا چاہیے. یہ دنڈ کہیں سے بھی اور کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے.
لوگوں کے ہاتھوں میں بہانہ نہ رہ جائے اس کے لیے انہیں سچیت کرنا اور ڈرانا ضروری ہے، اور اس سے پہلے دنڈ نہیں آتا.
پرکرتی ایشور کی شکتی کے ادھین ہے. جو شکتی آکاش سے پانی برسا سکتی ہے، وہی شکتی پتھر بھی برسا سکتی ہے.